अब अंदाज फिर आगे थोड़ा सा मक्की सूरतों ही वाला, मुखालफत शदीद थी। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआना तंज़ीला, ए नबी, हमने ही आप पर थोड़ा थोड़ा करके ये कुरान नाजिल किया। बज़ाहिर यहाँ खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन सुनाना मक्का वालों को है। एतराज़ करते थे कि ये अगर कुरान इस नबी ने बनाया तो सोच सोच के क्यों बना रहे हैं, अगर अल्लाह की तरफ से आना होता तो इकट्ठा आ जाता। ये एतराज़ पीछे हम इनकार सुन चुके, गोया कि इसका थोड़ा थोड़ा करके आना लगता है कि ये बेचारे खुद ही बैठ के सोचते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जितना काम हो जाता है वो सामने ले आते हैं। अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं कि तुम ये कहते हो, हालांकि हम ये कहते हैं कि इस कुरान का नज़ूल एक हिकमत के साथ है, तंजील तफ़ील का बाब है। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, वो ज़मीन के अंदर जाती है, कुरान का जो थोड़ा थोड़ा एक असर हमारे दिलों में आता है उससे वाकई कुरान दिल की ज़मीन के ऊपर जाता है। तेज़ बारिश एकदम बरस हो जाती है, जलथल भी हो जाती है, पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन बाद में पानी खड़ा होता है और कुछ दिन के बाद फिर कुछ भी नहीं रहता है। तो कुरान पढ़ने का भी बेहतरीन तरीका क्या है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके लिया जाए। हम जब रमज़ान में दौरे कुरान करते हैं तो एक तेज़ बारिश की तरह लगता है, वाकई जिस जज्बात में बहार आने लगती है, जैसे बारिश के बाद एक निखार आता है, दिल माइल हो जाता है कुरान को पढ़ने के लिए। लेकिन कायल कब होता है? कुरान पढ़ने के बाद। एक एक लफ्ज़ हिकमतें, इसका ये फ़ायदा, इसका वो फ़ायदा, तो दोनों बारिश जो है वो बेहतर है। पहले बंदा हल्की बारिश डाल ले दिल पर, फिर तेज़ डाल ले, फिर हल्की डाल ले, यानी ये ज़िंदगी का एक सिलसिला है। आप देखते हैं कि बारिश में भी हमारे लिए सीखना है, कभी तेज़ी से कुरान पढ़ो जहाँ मौका आ गया, फिर थोड़ी डेप्थ में जाके पढ़ो। अब डेप्थ में पढ़ लिए, अब फिर तेज़ी से पढ़ के देखो कि भला कितना समझी हो। ये तहें लगती हैं, जैसे आप केक बनाते होंगे ना, तो उसमें कई तह हैं, कहीं उसमें फ्रूट की तह लगती है, कहीं चॉकलेट की तह लगती है, इसी तरह फिर उसका टेस्ट आता है ना। सादा केक और एक अच्छा क्रीम केक, फ़र्क क्या है? तहों का फ़र्क है ना। कुरान की जितनी तहें हमारे दिलों में लगती हैं उतना ही इंशाल्लाह उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो बिल्कुल हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, जिसको आप कह सकते हो ना कि रच बस जाना। कोई भी चीज़ आप थोड़ी सी लगाएं, फिर ज़्यादा करें, फिर थोड़ी करें, कई चीज़ों में आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने खूब हिकमत से ये थोड़ा करके दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पता नहीं था, ये हिकमत का तकाजा था। अगर छोटे बच्चे के ऊपर आप बड़े के खाने का बोझ डाल दें तो उसका स्टमिक सेट नहीं करेगा, इसलिए भी कुरान तंजील है कि इंसान जज्ब कर ले। इतनी नेमतें एक साथ लेके दिल का क्या हाल होगा? थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक आयत समझ आ जाती है, जिस दिन उस दिन शाम तक दिल खुश रहता है। तो जब हमें सारा कुरान इकट्ठा दे दिया जाता है तो दिल तो हो सकता है कि इसका बोझ ही ना सहार सकता, लिहाजा इनकी बातों को छोड़ दीजिए। फसबिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुती मिन्हुम आसिमन औ कफूरा, और अपने रब के हुक्म का इंतज़ार कीजिए और ना कहना मानिए इनमें से किसी बदकार और एहसान फरामोश का। अल्लाह के नबी को तसल्ली दी जा रही है कि अल्लाह ने आपको जिस काम के लिए चुन लिया आप करते जाइए, इनकी सख्तियों और मुश्किलात पर सब्र कीजिए, जो कुछ भी तुम पर गुजर जाए इस्तकामत के साथ बर्दाश्त कर लें और आपके पाँव में लफ्जिश ना आए। होता भी यही है, जब दूसरे हमें झुटलाते हैं ना तो हमारी सोच भी झटकने लगती है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर वो चीज़ खुद भी महसूस करते हैं कि अच्छा शायद हमने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया, हम ज़्यादा ही नहीं सख्त हो गए, क्या मैं ज़्यादा तो नहीं दीन पे लग गई? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, आपने पीछे नहीं हटना, जो कुछ कर रहे हैं उसको करने दीजिए, किसी से दब के अपने दीन की तबलीग नहीं छोड़नी, किसी बुरे शख्स की खातिर अपने दीन को नरम नहीं करना। ये भी तब्दीलियाँ होती हैं, जब बहुत सारे लोग ही अमल नहीं कर रहे तो चले हुक्म बदल देते हैं ताकि इतने सारे लोग गिल्ट से बच जाएं। कह दीजिए एक दफ़ा ये हलाल है, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो कर ही रहे हैं पहले। आप कह दें चले आपके दिल में नहीं है, अल्लाह तो जानता है, आप ऊपर से कह दें, गिल्ट ख़त्म। अल्लाह कहता है नहीं, कोई तरमीम नहीं, कहीं तगैर तब्दीली नहीं होगी, हलाल को हराम, हराम को हलाल नहीं कह सकते। कोई कितना भी कर ले आपके साथ इस पे मामला, आप अपना काम करते जाएं। ये है वो चीज़ एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप को अल्लाह से जोड़े। और इनकी बातों का तोड़ क्या है? बस कुरिस्मा रब्बी का बुकरत हूँ व असीला, और याद करते रहें अपने रब के नाम को सुबह को भी और शाम को भी। ये है असल बात। वमिनल लैली फसजुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, और रात की तन्हाइयों में भी इसको सजदा किया कीजिए, रात काफ़ी वक्त इसकी तस्बीह किया करें। قرآن پاک کا ایک اسلوب آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، جہاں کفار کی مخالفتوں کا تذکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو صبر اور ثبات کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ کا ذکر، نماز، روزہ وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی طاقت کا اصل سرچشمہ اور قوت ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے. اللہ کی یاد دوسروں کے غم بھلا دیتی ہے. اللہ کی یاد سے بندہ بالکل ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. آپ امیجن کریں نا کہ آپ دین پہ آ گئے، آپ تو ایک دنیا میں آ گئے، نئی دنیا آپ کی بن گئی. وہ دنیا اس دنیا سے بہت مختلف ہے جس کے اندر آپ جیتے ہیں. اب آپ کیا کریں؟ اس دنیا کو دیکھیں، پلٹ پلٹ کے دیکھیں، لوگ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتی ہوں. نہیں، آپ اگلی دنیا میں دیکھیں. کسی کا غم بھلانا ہے نا تو آپ آگے دیکھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی چوٹیں، ان کی تکلیفیں، ان کے دیے ہوئے دکھ، ان کی دوا ایک ہی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کیجیے. صبح کو بھی کریں، شام کو بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کو صبح کو بھی دکھاتے ہیں، یہ آپ کو شام کو بھی دکھاتے ہیں. انہوں نے آپ کی مخالفت کے لیے رات دن ایک کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اس رب کو پکاریے. اس لیے کہ وہی ذات ہے جو مدد لائے گا، جو مدد بھیجے گا، اور دوسری بات ہے کہ اس کا ذکر تمہیں دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. یہاں سے نمازوں کے اوقات بھی آتے ہیں. بکرا کا لفظ جو ہوتا ہے، پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں، صبح کا بالکل ارلی مارننگ وقت. اصیل کا وقت جو ہوتا ہے، یہ زوال کے وقت سے غروب تک کے لیے ہوتا ہے. اگر بکرا تن کا معنی لیں تو فجر کی نماز آگے. حیرت کی بات ہے، اسلام کا توحید کے کلمے کے بعد سب سے بنیادی رکن نماز، نہ اس کے پورے پانچ نام قرآن پاک میں، نہ طریقہ، نہ وقت، اشارے ملتے ہیں حجیت حدیث کے لیے. ورنہ تو جو لوگ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے بھی ہیں کسی مجبوری کے حق، وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں تو سب کچھ قرآن سے مل گیا. نہیں، حدیث کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس لیے سمجھ آتا ہے. تو یہاں اشارتاً بتا دیا کہ بکرتن میں فجر، اصیلن میں ظہر اور عصر، یہ زوال کے بعد ہوتی ہیں. اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ میں کون سی نمازیں آتی ہیں؟ مغرب اور عشاء. اور اس کے بعد بعض کہتے ہیں کہ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا میں تہجد کی نماز ہے. تو گویا کہ پانچ فرض نمازیں اور ایک تہجد کی نماز، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت کے اندر اشارتاً بتا دیا کہ یہ ہے وہ مشکلات سے بچنے کا راستہ جو دین کی طرف بلانے، دین کی طرف آنے کے بعد لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. لہٰذا تم اپنے وقت کو کارآمد چیزوں میں لگاؤ، چھوڑ دو ان باتوں کو. آپ آزما کے دیکھیں، کبھی کسی کا کوئی ایک جملہ آپ کا دل دکھائے، کسی کی بات، کیونکہ آج ہاتھ تو الحمدللہ کم ہی اٹھتے ہیں، آج فزیکل ٹارچر تو کم ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو، لیکن ہم تو چھوٹی سی بات نہیں برداشت کر سکتے. ہمیں کوئی ذرا سی بات کہہ دے، ہم کئی دن تک بیمار پڑے رہتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں. ایک جملہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولا، پھر لکھ لیجئے کہ حساس لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. آئی ایم ویری مچ سینسٹیو، آئی ایم ایکسٹرا سینسٹیو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. پھر میں کئی کئی دن سوچتی رہتی ہوں، پھر میں بستر پہ پڑ جاتی ہوں، پھر میں دکھی ہوتی ہوں. تو آپ آرام فرمائیں، آپ دین کے کسی کام کے نہیں ہیں. دین کا کام پتھر دل لوگ کرتے ہیں، پہاڑوں جیسے عزم رکھنے والے، بڑی بڑی بیماریوں کو پی جائیں، بڑی بڑی مخالفتوں کو سہ جائیں، بڑے بڑے دکھوں کو دل میں یوں سکھ بنا کے پیش کرے کہ وہ دکھی نہیں تھا. جو بہت سینسٹیو بندہ ہوتا ہے نا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ خود کو بوجھ رہا ہوتا ہے، مجھے یہ کہہ دیا دکھی، مجھے چھینک آ گئی میں دکھی، میرا مسئلہ یہ ہو گیا میں دکھی، دکھی دکھی، میں خود پرست، خدا پرست بننے کی ضرورت ہے. بالکل سینسٹیویٹی جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو اس کو ایک بڑا اچھا مسئلہ دیتے ہیں، یہ بڑی سینسٹیو ہے، اس کو کچھ نہ کرنا، ہتھیلی کا چالہ بنا کے پالتے ہیں. نہیں، بیکار ہوتے ہیں ایسے لوگ، وہ اللہ کے دین کے کام کے نہیں ہیں. ایسی عورتیں، ایسی لڑکے دیکھے، ساری زندگی گھر والوں کے لیے بھی مسئلہ رہتی ہیں، ٹھیک آگے بیمار ہو گئے. ایک مرد کی بات یاد آ گئی، کہتے تھے آپ کو پتہ ہے میں اپنی بیوی کی اتنی باتیں کیوں برداشت کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اس کو ایک ڈانٹ دی تو یہ 10,000 روپے کی مجھے پڑے گی. کسی نے پوچھا کیسے؟ کہا اس نے اس کے بعد بیمار پڑ جانا ہے، پھر دوائیاں مجھے لانی پڑنی ہے. یقین کریں، یہ بہت دکھ کی بات ہے. کئی لوگ ہر وقت دکھی رہتے ہیں، ان کو یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں آج دکھ کوئی کیوں نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آج کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے، ان کی پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ میں آج کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے. توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگے کہ اس عادت کو آپ سے نکال دے. अगर आप कोई काम करना है, दीन बहुत पॉजिटिव लोगों का काम है, यकीन करें। अगर अभी यहाँ बैठे बैठे मैं किसी साइकोलॉजिकल हमले में चली जाऊँ ना, अल्लाह ना करे, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। ये जितना मैं क्लासरूम में आपको चेंजेस करवाती रहती हूँ ना, सीधे बैठे, शोर ना करें, पेज ना पलटे, टेढ़े ना, ये असल में मेरी साइकिक जो होती है ना, वो मुझे बोलने नहीं देती। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को सुना रही हूँ जो भी जहनी तौर पर तैयार नहीं है। और जब मैं कहीं आप लोगों को, तो मैं कह सकती हूँ ना, तो मैं कह दूंगी, जहाँ मैं दरसों में जाती हूँ, बाज़ दफ़ा पूरी कोशिशों के बावजूद पीछे बड़ी मुखार होती है। आप लोगों में भी जो पीछे रहते हैं वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं कभी कभी। फिर मैंने अपने लिए क्या सुर बनाया, मैं सामने देखती हूँ, यानी मैं अपनी आईज़ को दूर नहीं देखती। जैसे अभी इस वक्त मैं आपको वो पीछे तक देखना चाह रही हूँ ना, फिर मैं यूँ देखती हूँ, मैं कहती हूँ जहाँ तक लाइनें ठीक हैं, जहाँ लोग गए, बस मैं बात करते हुए यूँ देखती हूँ। हमें से हर बंदा अपनी ज़ात के लिए एक क्राइटेरियन बना चुका होता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि अगर अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को आप यूं देखेंगे ना, कहाँ गई मुश्किल, कोई आ रही है, उधर भी लग रहा मुश्किल आने लिए, उधर सारी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। करीब की खैर को देखें, मुश्किलात को दूर कर दें, फिर देखिए कितना सुकून मिलता है। और अगर उसके बाद भी सुकून ना मिले, तो जाइए अल्लाह से रो धो के माफ़ियाँ मांग लें। कभी लोगों की शिकायतें लगा दें, कभी गिफ्तें कर लें, दिल हल्का कर करा के आ जाए। जो बंदा रात को अल्लाह को सुना लेता है, उसको दिन में बंदों को सुनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये जो हमारे यहाँ बात में पेट में बात उछलने का तसव्वुर है ना, वो भी दुरुस्त नहीं है। गोया कि अल्लाह को नहीं सुनाया। अल्लाह ताला कहते हैं, आपको पता है इनकी इन मुखालफतों की वजह क्या है, क्यों दिल नहीं लगता इनका इस चीज़ में, क्या इनको कुरान बुरा लगता है? इनकी तो जुबान थी, इनको तो उसका एक एक लफ्ज़ समझ आता है। वजह क्या है, क्यों सीरियस नहीं होते, क्यों जिसम इधर है दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, या क्यों आपको तंग करते हैं, क्यों सताते हैं? क्योंकि इन्नहा उला युहिब्बुन अलाजिला, बेशक ये लोग दुनिया की मोहब्बत में चूर हैं। व यजरू नवरा अहम यौमन सकीला, और पसे पुश डाल रखा है उन्होंने बड़े सख्त दिन को। असल बात दुनिया परस्ती है। देखिए, दुनिया परस्त खुदा परस्त नहीं हो सकता। परस्तिश के लफ्ज़ को तो अब आप समझ गया ना, जो अपनी महबूबा का परस्तार है वो खुदा का परस्तार नहीं हो सकता। खुद को पूजने वाला, दुनिया को पूजने वाला, आखिरत से बेफिक्रा और बेनियाज रहने वाला कभी भी आपकी बात सोच ही नहीं सकता। देखिए कि आप पिछले तकरीबन 1.5 साल से इस कुरान से जुड़े हुए हैं, कितनी दफ़ा दुनिया बीच में आई, कितनी दफ़ा उस दुनिया ने आपको खींचना चाहा, लेकिन कौन सी चीज़ ने आपको जोड़ा? कि वरा अहम, जो पीछे पड़ी हुई चीज़, जो आने वाली है, जो आखरत है। वरना हो सकता है हर दिन सुबह उठ के हमारे पास एक पूरा सॉलिड उजर मौजूद हो क्लास में ना आने का, है कि नहीं? कहीं वो कोई ज़ाती ज़रूरत हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, कहीं कुछ है। अल्लाह ताला कहते हैं, ये दुनिया की मोहब्बत, ये आजीला की मोहब्बत, ये है जो बंदे से आखरत पीछे डलवा देती है। अल्लाह कहते हैं, पीछे डाल दिया या ज़रूर ना, इतनी बड़ी हकीकत को तुमने सिर्फ चांस पे छोड़ दिया। यौमन सकीला, वो इतना बोझल दिन है, सकल है, बोझ आने वाला है। और मुझे इस वक्त वो हज़रत अली का जुमला भी याद आ रहा है कि जो एक बद्दू को उन्होंने कहा, जो कहने लगा, क्या तुम मुसलमान हो, जीना हराम किया हुआ अपना, कोई खाते नहीं पीते नहीं, गम 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 गम, हम देखो कितनी मौज मस्ती करते हैं। तो कहने लगे कि देखो भाई, अगर तुम्हारी बात ठीक है कि कोई क़यामत नहीं, कोई डे ऑफ जजमेंट नहीं, कोई यौमन सकीला नहीं, तो मेरा क्या गया? अगर मैं कुछ नेकी करता हूँ, मुझे दुनिया में खुशी मिलती है, मैं सदका करता हूँ, किसी गरीब का भला हो जाता है, अगर किसी हराम से मुंह फेरता हूँ, तो मुझे क्या, मुझे इबादत में लज्जत मिल जाती है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर क़यामत ना भी आई, मैंने क्या लूज़ किया? तुम सोचो, बिलफर्ज सोचो कि अगर एक लम्हे के लिए वो बात सच हुई जो मेरा अकीदा, तुम्हारे साथ क्या बनेगा? इतनी लॉजिकल बात थी, दिल पे लगी, मुसलमान हो गया वो शख्स। यौमन सकीला को भूले हुए, टैक्स के दिन को कितना सकील दिन समझते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स आनी हो तो कितना यौम सकील होता है वो। दुनिया में कोई हमसे पूछ ले, जान पे बनी होती है, पुलिसमैन सामने आ जाए, वो लम्हा यौमन, छोड़िए लम्हा सकीला बन जाता है हमारे लिए। उस वक्त हमें इस तरीके से मुश्किल लगता है, कोई पूछ गीछ का मामला जहन में रख लें, सिर्फ कोई बंदा जिसने हमें 4 पैसों का काम दिया हुआ ना, वो बैठ के हिसाब ले ले, तो हमारे हाथ पहले ठंडे होते हैं, सब कुछ भी ठीक होगा, तो ऐसे लगता है कुछ ठीक नहीं है। असल बात यह है कि पढ़े हुए में से पढ़ाया जाता है, फिर भी टेस्ट देना हमें मुश्किल लग रहा होता है। आप सोचिए क़यामत के दिन क्या होगा, कि जो पढ़ा वो जल्द दिन है। पीछे हमने पढ़ा, लल काफिरीन गैरु यसीर, काफिरों पे कोई आसान नहीं होगा, ना शुक्रे लोगों के लिए आसान नहीं होगा। नहनु खलकनाहुम, हमने ही इनको पैदा किया, ये हमारी ही तख्लीक है, फिर भी आज कैसे मुंह बढ़ा के बोलते हैं। अल्लाह की ज़ात पे इनको शक, अल्लाह के हिसाब पे इनको शक। वशददना असरहुम, और हमने इनके जोड़ बंद मजबूत बांध दिए। असर का लफ्ज़ जो है ना, यसरुन, एक चीज़ को दूसरी के साथ मजबूती से बांधना, यहाँ हमारे पट्ठों की तरफ इशारा है, रेशे पट्ठे जो जिस्म के अंदर बंधे हुए हैं। आप देखिए कि दुनिया में आपने देखा होगा कहीं भी दो चीज़ें होती हैं, फ्रिक्शन पैदा होती है। गाड़ी के शॉक्स का नाम सुना है, गाड़ी के शॉक घिस गए, लोग कहते हैं जी इसके शॉक बदलने वाले हो गए, मुसलसल पहिए रगड़ खाते हैं ना तो वो एक्सल जो होता है उसके गिर घूमते, दो तीन साल के अंदर वो हिल जाते हैं, टूट जाते हैं। ये हमारे जोड़ 40, 50, 60, 70, 80, 90 सालों के होने के बावजूद भी नहीं घिसते, ये किसकी जात है? कैसे इनके जोड़ों ने आज तक कितनी हरकतें की, पाँव कैसे चले? 360 जोड़ होते हैं जिस्म के, 360 जॉइंट है, तीन तो आपको इधर ही दिख रहे हैं, फिर इधर इधर देखें पांच उंगलियां, 20 उंगलियों के अंदर तीन है, कानों के जोड़ कहाँ कहाँ अल्लाह ने हमें, गाड़ी खोल के देखें अंदर कितने जोड़ होते हैं, इतने बड़े नट बोल्ट टांके लगे होते हैं, हमारे तो कुछ दिखते भी नहीं। मैं कहती हूँ सिर्फ हम अपने आप को देखें तो हमारे दिल झुक जाए, गौर करो तुम्हारे दिल से शक और शुभों के बादल छट जाएंगे अगर एक बार तुमने खुद को आईने में देखना शुरू कर दिया। कौन सा आईना? दिल का आईना। अल्लाह की ज़ात ने तुम्हें पैदा किया, कितने प्यार से पैदा किया, 70-80 साल चलते चलते भी तुम्हारे ये जोड़ नहीं घिसते, तुम क्या अल्लाह के बारे में बातें करते हो? वैज़ा शिना बदल नाम सालहुम तब्दीला, और जब हम चाहें तो इनकी शक्लों को बदल के रखते हैं। बहुत बड़े बनते हैं, बहुत बातें करते हैं, ये समझते हैं कि जैसे आज है वैसे ही रहे, इस एक जुमले के कई मुख्तलिफ मानी है कि आज हमने इनके जोड़ बांधे हुए हैं, हम जब चाहें इनको बदल दें। कैसे? पहली बात तो यही है कि जब हम चाहें इनको हलाक करें, दूसरों को इनकी जगह ले आए जिनके किरदार उनसे फ़र्क थे। दूसरा मफहूम क्या है कि जब चाहें इनकी शक्लें बदल दें, जैसे आज किसी को तंदुरुस्त किया हुआ है कल उसको बीमार कर दें, आज पूरे अज़ा वाला है कल उसका कोई उस जिस्म का झड़ जाए। आप देखिए दुनिया में तो आंखें छोड़ देती हैं अक्सर, बिनाई कमज़ोर हो गई, सुनने को नहीं मिल रहा, बात करते हैं तो हिलते हैं, बाज़ बुज़ुर्गों के हाथ कांपने लगते हैं। क्या ये बदल नाम सालहुम तब्दीला की सूरत नहीं है? कभी अपनी जवानी को देखें और बुढ़ापे को देखिए, तस्वीर किसी की रखी हो तो सर शर्म से झुक जाता है जब बच्चे कहते हैं कि ये आप ही हैं। कई लोग प्यार से अपनी जवानी की तस्वीरें लगाते हैं लेकिन बाद वाले पूछते हैं कि यकीन नहीं आता कि अम्मा जी ये आप ही हैं। इस यकीन न आने में क्या है? बदल नाम सालहुम तब्दीला, कैसे शक्लें बदल जाती, किसी को लकवा हो जाता है, किसी को फालज गिर जाता है, कोई बीमार, कोई किसी हादसे का शिकार, कोई कुछ। अल्लाह ताला कहते हैं कभी तुमने गौर किया? हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया, तुम्हें कदर नहीं आती, तुम फील नहीं करते, कैसे अल्लाह तुम्हें निकाल दे? सभी बुढ़ापे में बदलते हैं ना। अबू कतादा का नाम सुना होगा आपने, उनकी शान एक थी, किसी को पता क्या? अबू कतादा जो थे, इनके लिए एक मौके पे नबी सल्लम ने दुआ की, यानी मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह हक कैसे नहीं रखता। लंबी कहानी में नहीं पढ़ूंगी, कभी आप जब अल्लाह ज़िंदगी देगा आप हदीस पढ़ेंगे, आप उनके हालात में ख़ुद भी सुन लेंगे कि एक मौका ऐसा था कि ये गुसल कर रहे थे और इतने में सिर्फ इनके कानों में आवाज़ आई कि एक शख्स है जो इस्लाम का दुश्मन है और उसको पकड़ना है, कोई इस तरह की कहानी थी, उसको भी छोड़ दें। इन्होंने आधे धड़ को धोया हुआ, आधे को नहीं किया हुआ चादर बांधी और चले गए उसको मारने के लिए। जब ये कारनामा करके आए, अल्लाह के नबी सल्लम को खबर मिली, आपने फरमाया कि इससे जो माले गनीमत मिला सारा अबू कतादा को दे दो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अभी अपने जिस्म की तहारत में था या अपने जिस्म को पाक कर रहा था, लेकिन मैंने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि कहीं ये नेकी का मौका मेरे हाथ से चला जाए। अल्लाह के नबी ने दुआ की, ए अल्लाह अबू कतादा की स्किन, अबू कतादा के जिस्म को सलामत रख, बरकत दे। और आपको कहते इस दुआ का असर क्या हुआ? 70 साल की उम्र में ये फौत हुए थे लेकिन इनका जिस्म 15-16 साल के बच्चे का था, अल्लाह ने इनकी स्किन को वहीं रोक लिया। हम कहते हैं नेकी का काम करेंगे बूढ़े हो जाएंगे, छुरियाँ पड़ जाएंगी या फेशियल का टाइम नहीं मिलता चेहरा पीला हो रहा है, आप करके देखिए, बूढ़े ही नहीं होंगे, वल्ला ही नहीं बूढ़े होंगे आप। लोग हमेशा नेकी का काम करने वालों को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ओल्ड एटेड होंगे। कहीं दर्स होता था, जब भी मैं अमेरिका में, तो बहुत मैंने ट्रिप्स की हैं, तो लोग जो वैसे सुनते हैं या जो किसी से सुनते हैं कोई दर्स देने आ रहा है, तो जब वो आते थे तो उनके सबके अक्सर यही जुमले होते थे, आप तो इतनी यंग हैं आप। तो मैंने कहा आपको मैंने कब कहा था मैं बूढ़ी हूँ? नहीं, हमारे जहन में आता ही ये है कि दीन का काम करते हैं कोई माई कोई इस। एक दो खवातीन तो मेरे कानों में आज भी लफ्ज आते हैं। हमें उन्होंने रिसीव किया, बैठाया, थोड़ी देर बात की, हम थके हुए आए थे। उसके बाद वो फ़ोन पे दूसरों को अगले दिन के दर्द पर बुला रही थी, और हर फ़ोन पे ये कह रही थी वो तो इतनी यंग है, वो तो इतनी यंग है। अल्लाह के बंदो, आप क्या सोचते हैं कि बूढ़े होकर लाठी टेक के आपके पास आएंगे? तो लोग सोचते ही हैं बूढ़े। उस वक्त मैं इस बात को सोचती हूँ कि दीन का काम करने वाले कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि लोग हमेशा उनको बूढ़ा ही सोचेंगे तो उनको यंग ही लगेंगे। इसके बरक्स मैं उस वक्त भी ये सोचती थी कि फिल्मी हीरोइनों के बारे में अक्सर आप अखबारों में आर्टिकल पढ़ते हैं, अब उनकी उम्र ढल रही है, अब उनमें वो ग्लैमर नहीं रहा, अब नई हीरोइनें सामने आ गई हैं। आप दुनिया के काम करेंगे ना, वक्त के साथ आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, तो लोग आपको कंडेम करेंगे। और दीन के नाम के साथ जितने भी बड़े होते जाएंगे ना उम्र में, लोग आपको छोटे ही कहेंगे, कि क्योंकि लोग बड़े हो के भी वो काम नहीं कर पाते जो अल्लाह कभी जवानियों में करा लेता है। तो ये अल्लाह की बात है, ये दौलत, हुसन, चेहरा, स्किन, ये सब अल्लाह के हाथ में। आप कहते हैं एंटी रिंकल क्रीम खरीदनी है 2000-3000 की, फिर मैं जवान होंगी। अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्तों में आओ, मैं तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ता, तुम वही पैसा मेरे रास्ते में लगाओ, वही वक्त जो तुमने पार्लर्स में बैठना था लगाओ, मेरी मर्जी है। और आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें इंसान समझते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। समझते कब है? जब कुरान क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है, अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करना पड़ता है, तो बहुत सारी समझी हुई बातें भूल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये तो एक रिमाइंडर है। मुसलसल हर सूरत में ये लफ्ज़ कम वेश आ रहा है, इन्ना तज़किरा। और तज़किरा ऐसे जैसे आपने रिमाइंडर्स लगाए होते हैं अपने सेलफोन्स पर। पीछे बात की ना मैंने दो सूरत पहले, कि ये आपके सेलफोन में लगा हुआ एक रिमाइंडर है, ये आपके आईपैड में लगा हुआ एक रिमाइंडर है, अब ये जाते जाते तुम्हें रिमाइंड करा रहा है क्या के फमन शा तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। अब जिसका दिल चाहे अपने रब का कुर्ब हासिल कर ले, रब की तरफ आ जाए, उसका रास्ता इख्तियार कर ले, ये नसीहत दिल चाहता है मान लो, नहीं दिल चाहता कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई मजबूरी नहीं, ये मजबूरियों के सौदे नहीं हैं, ये दिल के सौदे। जो बंदा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेता है उससे ये काम नहीं होगा। मान लीजिए ये काम नहीं होगा आपसे, अगर आपने अपने आप को एक दिन बैठ के अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्या क्या करती हूँ मैं, मेरे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ, कितने टेस्ट दे चुकी, आज बैठ के सोचेंगे ना तो कल आप नहीं आएंगे। ये एक एहसास है, एक ऑनर है। फमन शा तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपका इस्तकबाल कर रहा है, बहुत खूबसूरत रास्ता सजाता है, फूल बखेरता है, फिर घर साफ करता है, सजाता है, संवारता है, फिर खाने पकाता है, फिर आपके बैठने की जगह सब कुछ करके अब दरवाजे में खड़ा है, क्या कहता है, आ जाओ तो अच्छा, रास्ता भी खुला है, घर भी साफ है, खाना भी पका है। लेकिन अगर कोई नहीं आता है, फमन शा तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, शौक की बात है, कोई मजबूरी का सौदा नहीं है, ये कोई दिल पे ज़बरदस्ती चस्पा की जाने वाली चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ है जिसके लिए दिल मायल करता है। हैरत की बात है, कुरान की तरफ हम आते हैं ना हमारा दिल बदलता है, लेकिन जब तक दिल थोड़ा बहुत नहीं बदला होता कुरान की तरफ हम आते भी नहीं है। बहुत गहरा ताल्लुक है दिल में, थोड़ी सी जगह बनती है ना तो हम अल्लाह की दावत कबूल करते हैं, फिर आते हैं तो दिल में इतनी जगह बन जाती है बाकी चीज़ें निकल जाती हैं। और अगर दिल ना चाहे ना तो सोने की चीज़ आपके सामने हो, लजीज से लजीज खाना आप नहीं खाएंगे। दुआ करें हमारा दिल चाहने लगे इस कुरान को, हम आजीला के पीछे ना पड़ जाएं इस कुरान के सफ़र के बाद इसके साथ। जहां कमी की मैंने इस पूरे कुरान में, ज़रा नोट तो करें, खुद से पूछें, एक एक दिन का हिसाब तो ऑफकोर्स हर एक के पास नहीं होगा अपना, लेकिन जहाँ भी इन 29 पारों में मेरे से कोई कमी हुई उसकी वजह क्या थी? कहीं आजीला तो नहीं थी? आप कहते नहीं आजीला तो बिल्कुल नहीं थी। आप फील करेंगे बस दफ़ा हम दुनिया का कोई काम ऐसा कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हम دین کے کام کے قابل نہیں رہتے. نماز کیوں نہیں ٹھیک پڑھی رات کو, عشاء کی وجہ کیا ہے؟ یحبون العاجلہ, سارا دن گھر صفائی کرتے رہے, سارا دن کام کرتے رہے, سارا دن معاملات اس طرح کے چلتے چلاتے رہے, نماز کے لیے وقت ہی نہ ملا. اتنا اپنے آپ کو اوور برڈن کیا, پریشان ہو گئے, بیمار ہو گئے, قرآن کلاس سے چھٹیاں ہو گئے, پیچھے ایک ہی عاجلہ چھپی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے ابھی تیسویں پارے میں عاجلہ کا لفظ دوبارہ آئے گا. عاجلہ عاجلہ, اتنے تھوڑے دلے ہو, اتنے جلد باز ہو. چلو ٹھیک ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, اور اے لوگوں تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے بجز اس کے کہ اللہ خود چاہے. یہ جملہ بھی آپ کو اب تیسرے بارے میں کثرت سے ملے گا. تمہاری چاہت کچھ نہیں ہے, اللہ کی چاہت ہے. ہونا وہی ہے جو اللہ کی چاہت ہے. کرو کوششیں, چھوڑو قرآن, کرو اپنی زندگی میں کوئی اور فیصلہ. ایک وقت آئے گا تم اپنی ساری کوششوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, میں نے جو چاہا تھا وہ ہوا نہیں, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے 29 پارے پڑھ لیے, نہیں, اللہ نے پڑھوا دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ کورس پورا ہو رہا ہے, نہیں, کروایا جا رہا ہے. ساری چاہتیں اس کی ہیں. یہاں پھر اللہ کی چاہت, خواہش اور مشیت میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یہاں مشیت ہے. اچھا کام بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, برا کام بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. مشیت کو آپ یوں کہہ لیں, پرمیشن, دیٹس اٹ. اگر کسی کو کسی ملک میں رہتے ہوئے شراب خانہ بھی کھولنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لیٹر چاہیے. اس کو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ شراب پیئے بیچے, لیکن ان کو پرمیشن لیٹرز گورنمنٹ سے لینا پڑتا ہے. اور کوئی ہاسپٹل بناتا ہے تو بھی گورنمنٹ سے پرمیشن لیتا ہے. مسجد بنائیں گے تو بھی پرمیشن گورنمنٹ سے لیں گے, نائٹ کلب بنائیں گے تو بھی اسی سے لیں گے. بس یہ پرمیشن لیٹر ہے اللہ کی مشیت. اللہ کی ذات اس طرح کے کاموں کو کرنے والوں کو بھی پہلے اجازت نامہ ایشو کرواتی ہے. جاؤ لے لو, کھولنا چاہتے ہو گناہ کا کام, شوق سے کرو, میں تو نہیں روکوں گا, لیکن میری رضا یہ نہیں ہے کہ تم کرو. مشیت اور رضا کا بہت فرق ہے. آپ کلاس کے لیے آئے, یہاں آپ نہ صرف یہ کہ اللہ کی مشیت سے آئے, اللہ کی رضا سے بھی آئے. اللہ خوش ہو رہا ہوگا اس وقت آسمان پہ کہ آپ اس کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کسی کلب میں جاتے ہیں جہاں جو فسق و فجور ہے, آپ وہاں بھی گئے اللہ کی مشیت سے گئے, لیکن اللہ خوش نہیں ہے. بالکل سمجھنے کے لیے جیسے ماں باپ بڑے برے دل سے اجازت دے دے بچے کو کچھ ایسے کام کی جو ماں باپ نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ اب نہ بھی کہوں گی تو اس نے کر ہی دینا ہے, تو پھر اور چار نصیحتیں کر کے کہتے ہیں اچھا جو کر لو. ہم ہار جاتے ہیں, اللہ نہیں ہارتا. لیکن جو کرے گا وہی جو تم چاہو گے. میرا رب ظلم نہیں کرتا, وہ بڑا انصاف والا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. اس کے علم کی انتہا کیا ہے, اس کو پتہ ہے تم کدھر جان رہے ہو, کس پر کون مہربانی فرماتا ہے, کس کے دل پر کیا گزر رہی ہے. قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے اس کو ہر ایک کا پتہ ہے. ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے. ظاہر بعض لوگ ہمیں قرآن سے دور دکھتے ہیں, ہمیں کوئی اجازت نہیں ان کے لیے یہ کہنے کی کہ وہ عاجلہ کا شکار ہو گئے. آپ کیسے جانیں اس کی مجبوری, میری آپ کیسے جانتے, آپ کی میں کیسے جانوں. اس لیے کبھی اس کلاس روم سے باہر والے لوگوں کو محروم نہ کہیں, کبھی ان کے اوپر نظریں نہ اٹھائیں, اپنی فکر کریں. یہ کہا کریں خود کو کوستے ہوئے کہ وہ تو اچھا ہے کہ گھر سو رہی ہوگی, میں تو یہاں آ کے سو رہی ہوں. میرا تو دل اس قرآن کی محفل میں بھی نہیں لگ رہا, وہ تو اچھا ہوا کہ کوئی جاب ہی کر رہا ہوگا نا. دوسرے پھر بھی اچھے ہوں گے, کچھ کر رہے ہیں, میں تو بارش میں بھیگنے کے باوجود سوکھی ہوں, میرا تو عمل ہی نہیں بدل رہا. خود کو مت کسی کو دیکھیں, کسی پہ کوئی نظر نہ اٹھائیں, کوئی انگلی نہ اٹھائیں, اپنے آپ کو دیکھیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ, جس کو چاہتا اپنے دامن رحمت میں داخل کر لیتا. کیسے؟ اب اس جملے کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھا, اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا نا, یہ آیت دیکھ کے کہے گا دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو دیکھنا مجھے بھی رحمت میں داخل کر دینا ہے. تو پہلے رحمت کے معنی سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایک رحمت اس دنیا کی ہے, اور وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے. یہ دنیا کی رحمت ہے. جس کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے اسی کو کل آخرت کی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ جنت تو میری رحمت ہے، تیرے اندر میں اپنی رحمت سے لوگوں کو بھیجوں گا، اور جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ کس کو اپنی رحمت میں کرتا ہے؟ دنیا میں نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، دنیا میں لوگوں کا میلان دیکھ کے ان کو موقع دیتا ہے، ہر ایک کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے تو ہر ایک کو قرآن کلاس میں بھی داخلہ نہیں ملتا۔ میڈیکل کالج میں داخلے سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں مینٹل لیول، اس کا معاملہ، اس کی کمٹمنٹ، اس کا پچھلا ریکارڈ۔ اللہ بھی ہمارا دیکھتا ہے قرآن سے پہلے کہ تم ڈیزرو بھی کرتے ہو، کوئی سیٹ ہی تو ضائع نہیں کر دو گے پانچ سال پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر بھی نہیں بنے اور کسی ایک کا حق بھی مار دیا۔ اس لیے پہلے اللہ دنیا میں نیکیوں کے مواقع میں دیتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ یہ دل کے سودے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں کی بستی میں ڈوبے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے ابھی دل تک گندا پانی نہیں گیا، اللہ ان کو یوں نکال کے وہاں سے لے جاتا ہے، اور کوئی بہانہ بن جائے جس کو کہنا چاہیے یا کوئی سبب بن جائے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں ایسا نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں خیر تھی، اس نے تو بہت چاہا لیکن اللہ نے موقع ہی نہ دیا۔ مثلا میڈیکل کالج کی آپ کو مثال دی ہے، کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں واقعی ڈیزرونگ ہوتے ہیں، میرٹ پہ بھی پہنچتے نہیں داخلہ ملتا، ریسورسز کی کمی، رشوت نہیں دے سکے، سفارش نہیں کر سکے، یا پھر بھی سیٹس نہیں تھی، تیز ضائع ہو جاتے ہیں بچے۔ اللہ کسی ایک کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ مجبوری کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ میڈیکل کالجز کی تو ایک لمٹ ہے نا داخلے کی، جنت میں کوئی لمٹ نہیں، اللہ تو سب کو ڈال کے پھر ایک نئی مخلوق بنائے گا، اس کو جنت میں ڈالے گا، پھر جنت بھرے گی، میرے آپ جیسوں سے جنت نہیں بھرے گی۔ اور اسی طرح جہنم بھی، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے تو اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اللہم لا تجلنا منہم، ظالمین کون ہیں؟ پہلے درجے پہ مشرکین، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں ہم پڑھ چکے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری بات، ظالم سے مراد کبائر کا مرتکب، کیونکہ ہر کبیرہ گناہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر ظلم کے مطابق سمجھنا چاہیے کہ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر گناہ اپنی شدت کے اس اعتبار سے ظلم ہی بن جاتا ہے۔ دیکھیے ایک رات بھی کال کوٹری میں رہنا پڑ جائے نا، سمجھ لگ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حقیقت میں ہمارے لیے آخرت کے معاملات کو روز روشن کی طرح واضح کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما